इतिहास के जितने भी महान शासक या राजा हुए हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि वो अपने परिवार के सबसे गहरे जो काले रहस्य होते हैं उन्हें दुनिया की नजरों से छिपा कर ही रखते हैं।
हाँ बिल्कुल, मतलब कोई भी राष्ट्र ये थोड़ी बताना चाहेगा कि भाई हमारी जो नींव है वो धोखे, ईर्ष्या या किसी बेहद शर्मनाक पारिवारिक विवाद पर रखी गई थी।
सही कहा। आम तौर पर सत्ता की जो कहानियां होती हैं उनमें नायकों को एकदम बेदाग और पवित्र दिखाया जाता है, लेकिन जरा सोचिए क्या हो अगर किसी बहुत ही महान सभ्यता की असल शुरुआत एक ऐसी डार्क फैमिली ड्रामे से हुई हो जहां
कोई भी किरदार पूरी तरह से निर्दोष ना हो,
है ना?
एग्जैक्टली।
और आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार ठीक यही सवाल है। हम डॉक्टर केनेथ मैथ्यूज के व्याख्यान के स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं
जो कि जेनेसिस यानी उत्पत्ति की पुस्तक के उन हिस्सों पर आधारित है जहां जोसेफ और उसके भाइयों की कहानी दर्ज है।
हाँ, तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ केवल एक पुरानी कथा को दोहराना नहीं है। हमें ये समझना है कि कैसे मानवीय खामियों, विश्वासघात और नैतिक पतन के इतने गहरे पानी के बीच से एक भविष्य की बहुत बड़ी योजना आकार लेती है।
बिल्कुल, और डॉक्टर मैथ्यूज के व्याख्यान से ये बहुत स्पष्ट होता है कि ये कहानी केवल कनान के उस सूखी जमीन के टुकड़े तक सीमित नहीं है, मतलब जहाँ ये लोग उस वक्त रह रहे थे।
हाँ, ये एक तरह से फॉरवर्ड लुकिंग या कहें कि भविष्य की ओर देखने वाला वृतांत है ना?
एकदम सही। ये इस बात की नींव रखता है कि कैसे याकूब का पूरा परिवार मिस्र पहुंचता है और कैसे ईश्वर के वे वादे जो इब्राहिम से किए गए थे वो एक बेहद अप्रत्याशित और अजीबोगरीब तरीके से पूरे होने शुरू होते हैं।
लेकिन पता है मुझे क्या दिलचस्प लगता है? इस पूरी भव्य योजना की शुरुआत बहुत ही क्षुद्र और घरेलू ईर्ष्या से होती है।
हाँ, और उस ईर्ष्या का जो केंद्र है वो एक बहुत ही विशिष्ट वस्तु है, एक अलंकृत चोगा,
या जिसे हम अक्सर कोट ऑफ मेनी कलर्स के रूप में जानते हैं।
अरे हाँ, वो मशहूर चोगा। जेकब अपने 17 साल के बेटे जोसेफ को ये खास चोगा भेंट करता है।
और यहाँ श्रोताओं को ये समझना बहुत आवश्यक है कि प्राचीन निकट पूर्व की संस्कृति में कपड़ों का ये विशेष टुकड़ा केवल एक सुंदर उपहार नहीं था, मतलब ये हैसियत, अधिकार और भविष्य के नेतृत्व का प्रतीक था।
तो क्या ये चोगा दिखने में कुछ अलग होता था?
हाँ ना, इस तरह के चोगे अक्सर लंबे होते थे जिनकी आस्तीन एकदम कलाई तक आती थी।
अच्छा,
तो जिसका सीधा सा मतलब ये है कि जो व्यक्ति ऐसा चोगा पहन रहा है वो खेतों में शारीरिक श्रम तो बिल्कुल नहीं कर सकता।
बिल्कुल नहीं कर सकता।
मतलब वो मैनेजमेंट के लिए बना है, खेतों में काम करने के लिए नहीं।
सटीक रूप से।
और ये चोगा पहनाकर जेकब बिना कुछ कहे ही ये घोषणा कर रहा था कि जोसेफ,
जो कि उम्र में 11वें नंबर का बेटा है, हाँ 11वें नंबर का बेटा होकर भी वो अपने सभी बड़े भाइयों पर शासन करेगा, ये एक बहुत गहरी पारिवारिक त्रासदी का संकेत है।
ऐसा लगता है जैसे जेकब अनजाने में ठीक वही गलती दोहरा रहा है जो उसके अपने माता पिता ने की थी। मतलब आइजैक और रिबेका ने भी तो एसाव और उसके बीच यही किया था ना?
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही दरार है, एक ऐसा जेनरेशनल ट्रॉमा जहां माता पिता का जो पक्षपात है वो परिवार को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देता है।
लेकिन देखिए, यहाँ मुझे एक बात खटकती है, हम सारा दोष सिर्फ पिता के पक्षपात पर तो नहीं डाल सकते ना?
आप जोसेफ की बात कर रही हैं?
हाँ, मतलब जोसेफ का अपना व्यवहार भी तो देखिए, वो अपने ही भाइयों की जासूसी करता है, पिता को उनकी बुरी खबरें ला कर देता है, और फिर वे उसके अजीब से सपने,
वो गट्ठर वाले सपने।
हाँ, एक सपने में भाइयों के अनाज के गट्ठर उसके गट्ठर के सामने झुक रहे हैं और दूसरे में तो सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे उसके सामने नतमस्तक है। मतलब आज के कॉरपोरेट माहौल में भी अगर बॉस का कोई फेवरेट कर्मचारी इस तरह का अहंकार दिखाए
तो उसके खिलाफ बगावत होना तो तय है।
बिल्कुल, क्या जोसेफ खुद अपने लिए गड्ढा नहीं खोद रहा था?
ये सोचना बहुत स्वाभाविक है और यही जोसेफ के चरित्र की जटिलता को सामने लाता है। देखिए, जोसेफ की उम्र उस समय केवल 17 वर्ष थी।
हाँ, एक टीनेजर ही तो था।
बिल्कुल, तो उसमें वो परिपक्वता या समझ नहीं थी कि वो अपने शब्दों के परिणामों को तौल सके। वो शायद ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका ये बड़बोलापन उसके भाइयों के आत्मसम्मान को कितनी गहरी चोट पहुंचा रहा है।
ये भी है।
लेकिन दूसरी तरफ भाइयों की प्रतिक्रिया भी कोई मामूली नहीं थी, वो केवल चेड़ या नाराजगी तक सीमित नहीं रही, उनकी ईर्ष्या एक खौफनाक साजिश में बदल गई,
जो मानव स्वभाव के उस अंधेरे पक्ष को दर्शाती है जहां इंसान अपने ही खून का प्यासा हो जाता है।
बिल्कुल।
और यहीं से ना ये कहानी एक थ्रिलर का रूप ले लेती है। जेकब जोसेफ को शेकेम भेजता है ताकि वो भाइयों का हालचाल ले सके। अब शेकेम कोई पड़ोस का गांव तो था नहीं, ये काफी दूर था।
हाँ, बहुत दूर था।
और वहां जोसेफ भटक जाता है। और पता है, इस पूरी कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा यहीं घटित होता है। जोसेफ को एक अज्ञात व्यक्ति मिलता है,
एक अजनबी।
हाँ, जो उसे बताता है कि उसके भाई तो दोथान चले गए। अब सोचिए, ये कोई साधारण रागीर नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कहानी में अचानक एक ऐसा किरदार आ गया है जिसका एकमात्र काम जोसेफ को मौत के मुंह तक पहुंचाना है।
और यहाँ डॉक्टर मैथ्यूज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इस प्राचीन ग्रंथ में कुछ भी संयोग मात्र नहीं है। ये जो अज्ञात व्यक्ति है ना, ये उस अदृश्य ईश्वरीय योजना का हिस्सा है जिसे धर्मशास्त्र में प्रोविडेंस कहा जाता है।
प्रोविडेंस।
अच्छा। हाँ, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। अब्राहम या खुद जैकब की कहानियों में हमने देखा कि ईश्वरीय शक्तियां या देवदूत साक्षात प्रकट होते थे।
हाँ, मतलब आसमान से आवाजें आती थी, जलती हुई झाड़ियां दिखती थी या रहस्यमय कुश्तियां होती थी।
बिल्कुल। लेकिन जोसेफ की कहानी का जो तंत्र है वो एकदम अलग है।
मतलब यहाँ ईश्वर पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। कोई चमत्कारिक रोशनी नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं।
हाँ, सिर्फ घटनाएं एक के बाद एक ऐसे घट रही हैं जैसे कोई शतरंज की चालें चल रहा हो। ईश्वरीय उपस्थिति यहाँ साधारण मानवीय निर्णयों और तथाकथित संयोगों के भीतर छिपी हुई है।
मतलब अगर वो अज्ञात व्यक्ति जोसेफ को सही दिशा न बताता तो जोसेफ वापस घर लौट जाता।
बिल्कुल, वो घर लौट जाता। उसे कभी भाइयों के हाथों धोखा नहीं मिलता, वो कभी मिस्र नहीं बेचा जाता, और भविष्य में जब भीषण अकाल पड़ता तो इस पूरे परिवार को बचाने की वो महान योजना कभी पूरी नहीं हो पाती।
ये अदृश्य योजना वाली बात तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन जो दोथान में घटित होता है ना, वो विशुद्ध रूप से क्रूर मानवीय राजनीति है।
कैसे?
जब भाई जोसेफ को दूर से आता देखते हैं तो वे उसकी हत्या का षड्यंत्र रचते हैं। रूबेन, जो कि सबसे बड़ा भाई है, शायद अपने नेतृत्व को बचाने के लिए कमजोर सा बचाव करता है।
हाँ, वो कहता कि इसे मारते नहीं है, बस इस सूखे कुएं में डाल देते हैं।
हाँ, लेकिन फिर जूडा सामने आता है, और जूडा का प्रस्ताव अक्सर बहुत से लोगों को भ्रमित करता है। वो कहता है, मारने से क्या फायदा, चलो इसे इश्माइली या मिडियानी व्यापारियों को बेच देते हैं।
और पता है, कुछ लोग इसे जूडा की दया मानते हैं,
जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है ना।
एकदम।
मुझे तो ये किसी भी कोण से दया नहीं लगती। ये तो पूरी तरह से एक कोल्ड ब्लडेड अवसरवादी व्यापारिक निर्णय है।
एक तरह का मुद्रीकरण।
बिल्कुल। जूडा मूल रूप से ये कह रहा है कि हम अपने हाथ खून से क्यों रंगे, जब हम अपने भाई की जिंदगी का सौदा करके कुछ चांदी के सिक्के कमा सकते हैं। ये नैतिकता तो नहीं है, ये तो अपराध का मुद्रीकरण ही है।
ये विचार बहुत ही सटीक है। जूडा का प्रस्ताव भाइयों के नैतिक पतन की चरम सीमा को दर्शाता है। वे केवल अपने भाई को गुलामी में नहीं धकेल रहे थे, बल्कि वे अपने वृद्ध पिता को भी सबसे क्रूर मानसिक यातना देने की तैयारी कर रहे थे।
वो चोगे वाली घटना।
हाँ, जिस अलंकृत चोगे ने इस ईर्ष्या को जन्म दिया था, उसी चोगे को उन्होंने एक जानवर के खून में रंग कर पिता के सामने फेंक दिया, ताकि पिता ये मान ले कि किसी जंगली जानवर ने जोसेफ को फाड़ खाया है।
यहाँ मुझे एक बहुत गहरा कर्मा या विडंबना भी दिखाई देती है।
कैसे?
अगर आपको याद हो तो दशकों पहले खुद जैकब ने अपने पिता आइजैक को धोखा देने के लिए मरे हुए जानवर की खाल का इस्तेमाल किया था।
अरे हाँ, ताकि वो अपने भाई एसाव का आशीर्वाद चुरा सके।
बिल्कुल। और अब जैकब के अपने ही बेटे एक मरे हुए जानवर के खून का इस्तेमाल करके उसे धोखा दे रहे हैं।
ये इस पूरे वृत्तांत की सबसे बड़ी साहित्यिक और दार्शनिक ताकतों में से एक है। ये साफ साफ दिखाता है कि धोखे के बीज हमेशा धोखे की ही फसल पैदा करते हैं।
सही बात है।
जैकब, जिसने अपनी युवावस्था में चलाकी का सहारा लिया था, अब अपने बुढ़ापे में उसी चलाकी का सबसे बड़ा शिकार बनता है। वो बिना किसी सवाल के उस खून से सने चोगे को सच मान लेता है
और एक ऐसे गहरे शोक में डूब जाता है जहां वो किसी भी सांत्वना को अस्वीकार कर देता है।
बिल्कुल।
अच्छा, इस सारे घटनाक्रम को देखकर एक सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है।
बताइए।
भाइयों ने इतना विभत्स काम किया, पिता अपने अतीत के धोखों का परिणाम भुगत रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जोसेफ इस कहानी का एकमात्र बेदाग नायक या परफेक्ट हीरो है? क्योंकि अक्सर हमारी आदत होती है ना कि ऐतिहासिक या धार्मिक कहानियों में हम काले और सफेद रंग में दुनिया को बांट देते हैं, एक तरफ पूरे विलेन और दूसरी तरफ एकदम पवित्र नायक।
हाँ, और ऐतिहासिक रूप से कई विद्वानों और व्याख्याकारों ने ठीक यही करने की कोशिश भी की है।
अच्छा।
हाँ, उन्होंने जोसेफ को एक आदर्श मसीहा के प्रतिरूप या परफेक्ट टाइप के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। लेकिन डॉक्टर मैथ्यूज इस व्याख्या का कड़ा विरोध करते हैं। उनके विश्लेषण के अनुसार जोसेफ कोई बेदाग नायक नहीं है।
क्या आप बात कर रहे हैं?
जी हाँ, वो एक बहुत ही वास्तविक खामियों वाला इंसान है। हमने देखा ना कि शुरुआत में वो कितना घमंडी और ना समझता।
हाँ, वो सपनों वाली बात।
और अगर हम कहानी में आगे जाते हैं, जब वो मिस्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है, तो वो अपने भाइयों के साथ पूरी तरह से सीधा व्यवहार नहीं करता। वो कूटनीति, छल और उन्हें परखने के लिए कई तरह के मनोवैज्ञानिक दांव पेच खेलता है।
ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत ही राहत देने वाली बात है।
राहत देने वाली? कैसे?
अरे, आखिर हम एक 17 साल के लड़के से, जिसने इतना बड़ा आघात झेला हो, अपने ही परिवार से धोखा खाया हो, उससे पूर्णता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?
हाँ, ये भी है।
मतलब स्रोत स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि ईश्वरीय वादे पूर्ण या परफेक्ट लोगों पर निर्भर नहीं है।
और यही जेनेसिस के इस पूरे खंड का मुख्य सार है। अगर हम अब्राम से लेकर आइजैक और फिर जैकब तक की वंशावली को देखें, तो इनमें से कोई भी बेदाग नहीं है। सभी ने झूठ बोले हैं, सभी ने गलतियां की हैं।
तो फिर कोई भी परफेक्ट नहीं था।
डॉक्टर मैथ्यूज बताते हैं कि स्रोत ग्रंथों में शायद केवल सेलेम का पुजारी मेल्किसेदेक ही एक ऐसा चरित्र प्रतीत होता है जो एक पूर्ण मसीहा के करीब दिखता है। बाकी सभी पात्र बहुत ही त्रुटिपूर्ण हैं। ईश्वर अपने वादे इन्हीं उलझे हुए, जटिल और खामियों वाले इंसानों के माध्यम से पूरे करते हैं।
और मुझे लगता है कि इस नैतिक पतन और मानवीय खामियों का सबसे चौंकाने वाला प्रमाण हमें जोसेफ के बिकने के ठीक बाद मिलता है।
आप अध्याय 38 की बात कर रही हैं?
बिल्कुल। कहानी अचानक जोसेफ को मिस्र में छोड़कर जूडा पर केंद्रित हो जाती है। पहली नजर में तो ये एक अजीब सी रुकावट या डिटोर लगता है।
खरडोवे को लगता है कि ये यहाँ क्यों डाल दिया गया।
एकदम सही। ये हिस्सा जो जूडा और उसकी बहू तमार के इर्द गिर्द घूमता है, वास्तव में किसी भी तरह से कहानी से भटकाव नहीं है। ये स्थापित करता है कि जोसेफ के बिना जैकब का परिवार आध्यात्मिक और नैतिक रूप से कितनी तेजी से बिखर रहा था। जूडा अपने भाइयों और परिवार से अलग हो जाता है, जो अपने आप में उन वादों से दूर जाने का प्रतीक है जो उसके परिवार को दिए गए थे। वो एक कनानी महिला से विवाह करता है और उसके तीन बेटे होते हैं, एर, ओनान और शेला।
और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही डार्क टर्न लेती है। जूडा का सबसे बड़ा बेटा एर तामार नाम की महिला से शादी करता है, लेकिन उसका आचरण इतना दुष्ट होता है कि ईश्वरीय दंड के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है।
इसके बाद जूडा अपने दूसरे बेटे ओनान को तामार के पास भेजता है। और यहाँ हमें उस समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था, लिवरेट मैरिज या देवर विवाह प्रथा को समझना होगा।
बिल्कुल। इस प्रथा को समझना इस पूरी घटना की कुंजी है। प्राचीन इसराइल और निकट पूर्व में महिलाओं के पास आमतौर पर संपत्ति का कोई अधिकार नहीं होता था।
मतलब वो पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर थीं।
हाँ, एक विधवा होने का मतलब था भूख और बेसहारा होने का लगातार खतरा। तो लेविरेट प्रथा के तहत मृत व्यक्ति के भाई का ये नैतिक और सामाजिक कर्तव्य था कि वो अपनी विधवा भाभी से विवाह करे और एक उत्तराधिकारी पैदा करे।
अच्छा, ताकि परिवार का नाम चल सके।
हाँ, ये उत्तराधिकारी मृत भाई के नाम से जाना जाता और परिवार की जमीन और संपत्ति उसी के नाम रहती।
लेकिन ओनान इस जिम्मेदारी को निभाने से इनकार कर देता है। वो शारीरिक संबंध तो बनाता है, लेकिन वो ये सुनिश्चित करता है कि तामार गर्भवती ना हो।
जो कि बहुत ही स्वार्थी कृत्य था।
स्वार्थी? मुझे तो लगता है कि ओनान का ये कृत्य केवल स्वार्थ नहीं था, ये अपनी ही विधवा भाभी के खिलाफ एक तरह की आर्थिक और सामाजिक तोड़फोड़ की।
इकोनॉमिक साबोटाज।
हाँ।
वो जानता था कि अगर तामार का बच्चा पैदा हुआ तो संपत्ति का हिस्सा उस बच्चे को जाएगा। ओनान खुद वो संपत्ति हड़पना चाहता था।
और ओनान का ये लालच और कर्तव्य से भागना उस ईश्वरीय वादे का सीधा अपमान था जो इस वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था।
इस कृत्य के लिए ओनान को भी मृत्युदंड मिलता है। अब जूडा के पास केवल एक छोटा बेटा बचा है, शेला। जूडा डर जाता है।
उसे लगता है कि तामार अपशकुनी है और उसके बेटों को खा रही है ना?
बिल्कुल। इसलिए वो तामार से झूठ बोलता है और उसे उसके पिता के घर यह कहकर वापस भेज देता है कि जब शेला बड़ा हो जाएगा तब वह उसे बुला लेगा।
लेकिन जूडा कभी भी तामार को वापस नहीं बुलाता। बेचारी तामार सालों तक एक विधवा के लिबास में इंतजार करती है। और जब उसे एहसास होता है कि जुड़ा ने उसे धोखा दिया है और उसे बेसहारा छोड़ दिया है, तो वो मामलों को अपने हाथ में लेती है। वो एक वैश्या का भेष धारण करती है, अपना चेहरा ढकती है और उसी रास्ते पर बैठ जाती है जहाँ से जुड़ा गुजरने वाला था।
हाँ।
जुड़ा जो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद शोक से बाहर आ चुका है, उसे देखता है और पहचान नहीं पाता। वो उसके पास जाता है
और यहीं तामार अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करती है। वो भुगतान के रूप में तुरंत कुछ नहीं मांगती, बल्कि वो गारंटी के तौर पर जुड़ा से उसकी मुहर, कॉर्ड और उसकी छड़ी मांगती है।
और यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि प्राचीन काल में मोहर और छड़ी केवल सजावट की चीजें नहीं थीं।
बिल्कुल नहीं,
ये आज के दौर के आईडी कार्ड, पासपोर्ट या डिजिटल हस्ताक्षर की तरह थीं। उन पर व्यक्ति का प्रतीक खुदा होता था। अपना मोहर किसी को देने का मतलब था अपनी पूरी पहचान उसे सौंप देना।
सही कहा। तामार ने जुड़ा की पहचान अपने पास सुरक्षित कर ली। कुछ महीनों बाद जब तामार का गर्भ दिखने लगता है, तो ये खबर जुड़ा तक पहुंचती है कि उसकी विधवा बहू ने व्यभिचार किया है। जुड़ा त्वांत बिना किसी जांच पड़ताल के न्यायाधीश की भूमिका में आ जाता है और आदेश देता है, उसे बाहर लाओ और जला दो।
अरे बाप रे!
यह जुड़ा के पाखंड का सबसे चरम रूप है। जो व्यक्ति खुद वेश्यागमन कर रहा था, वो उसी अपराध के लिए अपनी बहू को मौत की सजा सुना रहा है।
लेकिन जैसे ही तामार को लाया जाता है, वो मोहर, कॉर्ड और छड़ी बाहर निकालती है। वो शांति से कहती है, ये जिस आदमी की चीजें हैं, मैं उसी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कृपया पहचाने, ये मोहर और छड़ी किसकी है?
क्या दृश्य रहा होगा वो?
ये दृश्य किसी भी कोर्टरूम ड्रामा से ज्यादा शक्तिशाली है। जुड़ा पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है।
और जुड़ा का वो क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो उन चीजों को पहचानता है और कहता है, वह मुझसे अधिक धर्मी है।
मुझसे अधिक धर्मी?
हाँ, यह वाक्य बहुत गहरे अर्थ समेटे हुए है। यहाँ धर्मी का मतलब ये नहीं है कि वेश्यावृत्ति या धोखा देना नैतिक रूप से सही था।
तो फिर क्या मतलब है?
इसका मतलब यह है कि जुड़ा ने उस वंशावली, उस परिवार और ईश्वरीय वादे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया, जबकि तामार एक बाहरी महिला होते हुए भी उस वंशावली को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही थी।
मतलब तामार ने उस परिवार के भविष्य को बचाया जिसे खुद उस परिवार के मुखिया ने मरने के लिए छोड़ दिया था।
बिल्कुल।
और इसके बाद जो जन्म होता है, वो भी इस अनियमित और उलझी हुई कहानी को और जटिल बनाता है। तामार जुड़वां बच्चों को जन्म देती है, पेरिस और जेरा। जन्म के समय जेरा का हाथ पहले बाहर आता है। दाई उस पर एक लाल धागा बांध देती है। लगता है कि बड़ा बेटा जेरा होगा, लेकिन फिर उसका हाथ वापस अंदर चला जाता है और पेरिस पहले पैदा हो जाता है।
और डॉक्टर मैथ्यूज इस जन्म के प्रतीकात्मक महत्व को रेखांकित करते हैं। ये जन्म एसाव और जैकब के जन्म की याद दिलाता है, जहाँ छोटा भाई बड़े को पछाड़ देता है।
अच्छा, इतिहास खुद को दोहरा रहा है।
हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि ईश्वरीय वादे, मानवीय परंपराओं जैसे सबसे बड़े बेटे को ही अधिकार मिलना उसके मोहताज नहीं है। ये एक बहुत ही अप्रत्याशित जन्म था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी पेरिस की वंशावली से आगे चल के राजा डेविड का जन्म होता है।
दाऊद?
हाँ, राजा दाऊद। ये वही शाही वंशावली है जिसे पूरे इतिहास में सबसे महान माना गया है।
यही वो बिंदु है जो इस पूरे वृत्तांत को इतना असाधारण बनाता है।
कैसे?
अरे, एक राष्ट्र के सबसे महान राजाओं की वंशावली में इतना बड़ा स्कैंडल। अगर ये कोई सामान्य ऐतिहासिक रिकॉर्ड होता, तो राजा के दरबार के इतिहासकार इस पूरे अध्याय को मिटा देते।
बिल्कुल।
वे तामार और जुड़ा की इस शर्मनाक घटना को छिपा देते और एक झूठी बेदाग वंशावली गढ़ते। लेकिन यह स्रोत अपनी सच्चाई को छिपाने के बजाय उसे पूरी नग्नता के साथ प्रस्तुत करने की हिम्मत दिखाता है।
और यही इसकी प्रामाणिकता का सबसे बड़ा सबूत है। ये कहानी हमें दिखाती है कि ईश्वर की योजनाएं इंसानी असफलताओं, ईर्ष्या और पापों के बावजूद अपना रास्ता खोज ही लेती हैं। जोसेफ का बिकना, भाइयों का पाखंड, जुड़ा का पतन और तामार का संघर्ष, ये सभी बिखरे हुए टुकड़े आगे चलकर सुलह और बचाव की एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाते हैं।
इंसान का सबसे गहरा पतन भी उस अंतिम उद्देश्य को बाधित नहीं कर सकता, बल्कि कई बार वो उसी उद्देश्य का माध्यम बन जाता है।
मुझे लगता है कि ये हम सभी के लिए एक बहुत गहरा सबक है। अक्सर माना जाता है कि हमारी खुद की विफलताएं, हमारे गलत फैसले या हमारे परिवारों में चल रहे गहरे विवाद किसी कहानी का दुखद अंत है। लोग निराश हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इस वृत्तांत को देखकर समझ आता है कि ये भ्रमित और जटिल परिस्थितियां केवल एक अध्याय हैं, पूरी किताब नहीं।
जूडा का ही उदाहरण ले, ये वही जूडा है जिसने अपने भाई को बेचा और अपनी बहू को धोखा दिया।
बिल्कुल।
लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने के बाद यही जूडा आगे चलकर कहानी में वो व्यक्ति बनता है जो अपने सबसे छोटे भाई बेंजामिन की जान बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा देता है।
क्या बात है, ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, ये उस भयानक गलती और उसके सार्वजनिक रूप से बेनकाब होने की भट्टी से होकर गुजरा। महानता पूर्णता की मोहताज नहीं है, ये गलतियों को स्वीकारने और उनसे आगे बढ़ने में बसती है।
तो आज की इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए ये विचार करना प्रासंगिक होगा कि हम इतिहास और घटनाओं को किस नज़रिए से देखते हैं। ये सच है कि इतिहास अक्सर विजेता लिखते हैं और वे अपनी कमजोरियों को सफ़ेद रंग से पोत देते हैं।
बिल्कुल।
लेकिन जब कोई प्राचीन ग्रंथ अपने सबसे महान नायकों के सबसे काले पलों को सहज कर रखता है तो वो हमसे कुछ कह रहा होता है। ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारी अपनी गलतियां, हमारी असफलताएं और यहां तक कि हमारे चारों ओर फैली अराजकता किसी ऐसी लंबी और महान योजना का हिस्सा हो सकती हैं जिसे इस समय समझ पाना हमारे लिए असंभव है। क्या आज की अराजकता भविष्य की किसी बड़ी व्यवस्था का पहला ड्राफ्ट हो सकती है?
यह निश्चित रूप से वर्तमान की उलझनों को देखने का एक बहुत ही अलग और आशावादी तरीका है। ये हमें याद दिलाता है कि जब तस्वीर धुंधली हो तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कुछ गलत है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी निर्माण कार्य चल रहा है
और उस निर्माण कार्य की धूल में भी कुछ बहुत बड़ा आकार ले रहा होता है। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस चर्चा ने श्रोताओं को अतीत की इन जटिल कहानियों को एक नए, यथार्थवादी और गहरे नज़रिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा।